आज की बात।
आज की बात लेकर आपकी सभा में उपस्थित हैं, कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। दोस्तों, भारत ने अभी कुछ दिनों पहले गणतंत्र दिवस मनाया है। आज हमारी चर्चा का विषय यही है। गणतंत्र दिवस हर देश के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत ने पिछले रविवार को अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर राजधानी में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। भारत की सैन्य शक्ति उल्लेखनीय है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका प्रजातंत्र है, जिसका आधार भारत का संविधान है। इस संविधान और 26 जनवरी के बारे में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में वर्णन किया।
आज से 7 दशक पहले 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके पहले ही इस तारीख का विशेष महत्व स्थापित हो चुका था। पूर्ण स्वराज का संकल्प लेने के बाद हमारे देशवासी 1930 से 1947 तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया करते थे। इसीलिए सन 1950 में उसी ऐतिहासिक दिवस पर हम भारत के लोगों ने संविधान के आदर्शों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए एक गणतंत्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, और तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आधुनिक गणराज्य की शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग स्वायत्त होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर आधारित भी होते हैं, परंतु वास्तव में तो लोगों से ही राष्ट्र बनता है। हम भारत के लोग ही अपने गणतंत्र का संचालन करते हैं। अपने साझा भविष्य के बारे में निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति हम भारत के लोगों में ही निहित है। हमारे संविधान ने हम सबको एक स्वाधीन लोकतंत्र के नागरिक के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत ही हम सब ने यह जिम्मेदारी भी ली है कि हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें। राष्ट्र के निरंतर विकास तथा परस्पर भाईचारे के लिए यही सबसे उत्तम मार्ग है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को अपनाने से इन संवैधानिक आदर्शों का अनुपालन हम सबके लिए और भी सरल हो जाता है। ऐसा करते हुए हम सब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को और भी सार्थक आयाम दे सकेंगे।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में भारत के कई राज्यों में शांति स्थापना के प्रयासों का उल्लेख करते हुए वार्ता और एकजुटता की जरूरत पर बल दिया।
देश के किसी भी कोने में अब भी हिंसा और हथियार के बल पर समस्याओं का समाधान खोज रहे लोगों से आज इस गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर अपील करता हूं, वे वापस लौट आए, मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में अपनी और इस देश की क्षमताओं पर भरोसा रखे। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो, एकजुटता हर समस्या के समाधान के प्रयास में हो, और भाईचारा हर विभाजन और बंटवारे की कोशिश को नाकाम करे।
इस एकजुटता और शांति को सुनिश्चित करने वाले भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ भारत में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने 26 जनवरी मनाई और एक प्रकार से संदेश भी दिया।
हाथ लग रहा है।
दिनांक 26 जनवरी 2020 को हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा
शाहीन बाग के साथ आजकल पूरे भारत में उसी संविधान की सुरक्षा की बात की जा रही है जिसने भारत को गणराज्य और दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाया। आज बहुत से लोगों का कहना है कि CAA जैसे कानून की वजह से संविधान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी प्रदर्शन किया।
हम लोगों ने फैसला ये किया है अब इस सरकार की बर्खास्तगी से कम हम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। सेवा का अगर मालिक बनने की कोशिश करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, उखाड़ के जड़ से फेंक देंगे। गद्दी छोड़ के जाना चाहते हो या इस कानून को खत्म करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। लड़ाई तुमने शुरू करी है, हमने नहीं, लेकिन इस लड़ाई का अंत इस देश की जनता ही इस बार करेगी। इस सरकार के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे आने वाले समय में हमें आवाज उठाने के काबिल भी छोड़ा नहीं जाएगा और ये देश को लगातार गृह युद्ध की तरफ झोंक रहे हैं। ये बड़ी सोच समझ के अपनी साजिश रचते हैं लेकिन उसको जामा जो पहनाते हैं देशभक्ति का बहादुरी का देश का नारा सब ये सारी चीजें देश के नाम में करते हैं लेकिन सब कुछ कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए और इस देश में मनुस्मृति लागू करने के लिए कर रहे हैं।
विपक्ष भी CAA का विरोध कर रहा है और उसकी वजह कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने वरिष्ठ पत्रकार आरिफा खानम शेरवानी से एक वार्ता में बताई।
बिल्कुल हम इसके सब बिल्कुल घोर विरोध करते हैं और आई टेल यू क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ बातें हमें समझानी होगी जनता को प्रदर्शकों को। वो ये है कि जो हमारी जो संविधान है उसके अंतर्गत जब सिटीजनशिप लॉ पास हुआ और ये संविधान में लिखा गया तो 5 पहलू के आधार पे नागरिकता मिलती है। पहला पहलू के आप इंडियन रिपब्लिक 1950 में जो स्थापित हुई 26 जनवरी अगर उसमें आप पैदा हुए उस टेरिटरी में पैदा हुए तो आपको नागरिकता मिलेगी। आप मुसलमान पैदा हो सकते हो, हिंदू सिख बौद्ध ईसाई, आपको नागरिकता उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। फिर अगर आपके पेरेंट्स पैदा हुए हों उस टेरिटरी में तो फिर आपको नागरिकता मिलेगी। आपके पेरेंट्स मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं। तीसरा नेचुरलाइजेशन कि अगर आप हिंदुस्तान में 11 साल रह रहे हो तो आपको नागरिकता मिलेगी, कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। हाँ, उसमें आप मुसलमान हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई, कोई बात नहीं। चौथी बात आप रजिस्ट्रेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन कि हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं या याचिका फाइल करते हैं कि भैया हमें आप सिटीजनशिप दो, उसमें भी कोई धर्म की बात नहीं। और चौथा जो टेरिटरीज हैं जो हिंदुस्तान के अंग में पहले नहीं थी जैसे गोवा हुआ, सिक्किम हुआ, तो जब गोवा हिंदुस्तान का अंग हो गया या सिक्किम हिंदुस्तान का अंग हो गया तो जो भी वहाँ स्थानीय लोग थे जो वहाँ रहते थे वो नागरिक बन गए, वो किसी भी धर्म के हों। तो जो हमारा संविधान है वो धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देता।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के प्रजातंत्र के बारे में कुछ खबरें चिंताजनक हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार।
177 साल पुराने इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने लोकतंत्र का एक नया सूचकांक बनाया, हमने प्राइम टाइम भी किया था इस पर, और इस सूचकांक पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत 91 नंबर पर खड़ा है और एक साल में 10 अंक नीचे आया। इकोनॉमिस्ट के कवर की चर्चा हो रही है, टाइम के कवर पर डिवाइडर इन चीफ के बाद इकोनॉमिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत को कटीली तारों के ऊपर खिले कमल के रूप में पेश किया है। इनटॉलरेंट इंडिया लिखा है, कवर स्टोरी में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि भारत के मतदाता का एक हिस्सा उनकी इस बात से सहमत है कि जो मुसलमान है वो गद्दार हैं। मोदी इसी आधार पर मतदाताओं का निर्माण कर रहे हैं। आजादी से लेकर अब तक भारत ने हमेशा से ही लोकतंत्र के खतरों की बातों को गलत साबित किया है, लेकिन जिस तरह से सोच समझकर इसके सेक्युलर ढांचे पर हमला हो रहा है वो पूरे राजनीतिक तंत्र को खतरे में डाल देने वाला है। वोटर को याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे बाकी माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या गैर हिंदी भाषी हों। ये लिखा है, ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी गांधी की बनाई अहिंसा की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 23 मई 2015 के इकोनॉमिस्ट के कवर पर पिछली बार प्रधानमंत्री जब छपे थे तो एक अकेला इस शहर में जैसे मुखड़ा मिला था और जैसे कोई मसीहा आया हो और वो सब ठीक करने वाला हो। अब उस मसीहा के भारत की बात पत्रिका के कवर पर कटीली तार के जरिए हो रही है। क्या कश्मीर की नीतियां और नागरिकता संशोधन कानून ने भारत के लोकतंत्र की छवि को धक्का पहुंचाया है? लिखा तो यही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिन पत्रिकाओं के कवर पर प्रधानमंत्री 2014 में संभावना पुरुष के रूप में छप रहे थे उन्हीं पत्रिकाओं के कवर पर बंटवारा प्रमुख के रूप में छपने लगे? इकोनॉमिस्ट में अक्टूबर के अंक में एक लेख छपा था कि नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री ने सही कहा है और ये निश्चित है कि शांति व एकजुटता ही किसी भी देश के विकास का आधार है और बंटवारा हरेक को कमजोर करता है और देश और समाज के लिए तो ये जहर है।